एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोग अब चीन को एक सैन्य खतरे के रूप में देख रहे हैं। ये 2022 के लोई इंस्टीट्यूट पोल के निष्कर्षों में से एक है और जिसमें पता चला है कि देश की सुरक्षा ऑस्ट्रेलियाई लोगों की चिंताओं में एक प्रमुख मुद्दा है और इस मुद्दे ने महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। लोई इंस्टीट्यूट के 18वें वार्षिक सर्वेक्षण में पता चला है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चिंतित कर रहे हैं, जिसमें शामिल हैं यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी लड़ाई, चीन की विदेश नीतियां और प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अड्डे के लिए उनकी योजनाएं। संस्थान की मतदान निदेशक नताशा कसम का कहना है,
Australians are feeling remarkably insecure and unsafe. Half the country report in the 2022 Lowy Institute poll that they don't feel safe. And this is for a few reasons, but the main one is Russia and Russia's invasion of Ukraine. I think it's been a reminder for the Australian public that we should not take our peace and security for granted. And so you see this increasing level of concern about Russia's behavior. Increasing concern about China as a military threat to Australia. And finally, a real anxiety that a war could break out between the United States and China over Taiwan.
शेरिल ड्यूरेन ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग में तैयारी और लामबंदी की पूर्व निदेशक हैं। वे रिपोर्ट के निष्कर्षों से हैरान नहीं हैं। वे कहती हैं,
One of my military study areas was psychological operations, and as part of that, we understand that media both reflects and influences public opinion. And we've really had wall-to-wall coverage on the war in Ukraine from this at least a month and a half to 2 months. So it's not surprising that these threats, and they're very real threats, the threat of nuclear war as a result of Russian action or miscalculation is quite significant.
ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की एक सीनेट की जांच में शेरिल ड्यूरेंट प्रमुख लेखक थीं। लगभग 30 वर्षों तक रक्षा क्षेत्र में काम करने के बाद वे अब ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिषद में काम कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे ग्लोबल वार्मिंग के दैनिक हमलों पर और अधिक मीडिया कवरेज देखना चाहती हैं।
I personally think it's up there equal with the possibility of nuclear war because both will destroy global order as will a great power war. So those threats for me have always been the two above the others. The real challenge and challenge for all the media is I'd love to see a wall-to-wall coverage of what's happening from a climate change perspective in the media for a month and a half and see what the response is. I mean, we've had occasionally the heat wave in India, floods in India, floods in China. There's been floods in Latin America. There's massive droughts across the northern part of Africa at the moment. But these things pop into the media for perhaps, 24 hours and then they're gone and they pop up again in another 3 weeks.
वहीं नताशा कसम बताती हैं कि जबकि परमाणु युद्ध ऑस्ट्रेलियाई लोगों के दिमागों में सबसे ऊपर हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के विषय में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की चिंताओं को कम नहीं किया है।
Australian concerns about climate change have been stable at a high level for the last 3 years, with around 60% of Australians saying that climate change poses a critical threat to Australia's interests. So concern about the climate hasn't reduced, but concerns about other issues have increased.
लोई सर्वेक्षण में शामिल 60% ऑस्ट्रेलियाई लोगों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है और ऑस्ट्रेलिया को इससे निपटने के लिए अभी कदम उठाने चाहिए, चाहे कितनी भी ज्यादा लागतें हों। क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के डायरेक्टर टिम बकली बताते हैं,
What's dramatically changed in the last 10 years is the ongoing annual massive deflation that we've seen in the cost of wind, in solar, in batteries, in electric vehicles, the massive technology change that's coming, which means no one can debate that the lowest cost source of new generation is renewable. It's only a question of what do we do with the stranded assets and how quickly do we move away from high emissions legacy assets, and how do we actually make sure the workforce and the communities aren't left stranded high and dry by it?
वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर मजबूत कार्रवाई के लिए जनता की इच्छा लगभग 2 दशकों से है और इसके बावजूद इस मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
We've had exceptionally politicized discussion, I think, with all of the media politicization, for want of a less polite phrase for it. I think the mainstream population's been very confused over the last decade, and we've had so much misinformation and outright lies and outright sloganeering that I think most people have tuned out or given up in despair. At the end of the day, what I find positive, we now have a federal government who's committed to action. We have all the states and territory governments committed to action.
इस सर्वेक्षण में 64% ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कार्बन टैक्स और एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम के लिए अपना सहयोग दिखाया है. और टिम बकली कहते हैं,
That's really positive. Certainly, I think the Albanese government will duck and weave on that one. I think it's really important, though, because at the end of the day, they'll duck and weave because the Murdoch media has made it so toxic. So I think it's great. At the end of the day, I think the Australian population's waking up to the critical nature of the climate crisis. When you've got heat waves hitting Europe, when you've got heat waves hitting India, when you've got rampant bushfires being reported every month around the world, unprecedented extreme weather events constantly bombarding us these days, it's hard not to be aware of it. So I think it's really positive that people are revisiting the discussion about an ETS and or a carbon price. It's critical.
इस सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया है कि 51% ऑस्ट्रेलियाई लोग रक्षा खर्च में वृद्धि का समर्थन करते हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है. नताशा कसम कहती हैं,
That is 20 points higher than 2 years ago. It's a really significant shift that points to that anxiety about China in the region and the idea that Australia actually needs to arm itself to preserve its peace and security.
हाल ही के बजट में रक्षा विभाग और ऑस्ट्रेलियाई सिग्नल निदेशालय को 48.6 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है. शेरिल ड्यूरेंट का सुझाव है कि जरूरी है कि इसके पीछे की सोच को देखा जाए कि इसे कैसे खर्च किया जाए, ना कि इसके आकार को. वे कहती हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को यह पहचानने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन रक्षा और विदेश मामलों की भू राजनीति को बदल रहा है.
Decarbonisation by 2030 with a net zero by 2050. So they mean they're talking quite seriously now about how militaries can decarbonise. And given the slow cycles in our procurement, you wouldn't want to be the last player left with diesel and fossil fuel powered equipments when your key allies have moved to something different. So I hope that the additional funding will partly go to matching step with our allies in terms of militaries being a driver of decarbonisation. I know there's some good examples there. I mean, Australian bases actually have been looking at renewables now for over a decade, in which you have some of the bases with substantial renewable resources on them.
SBS News se Tina Queen ki is report ko prastut kiya hai Natasha Call ne SBS Hindi ke liye.